لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني شرج اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. آقا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن اس وقت الاثر سوسائٹی میلبرن کے اس عظیم الشان ہال میں یا امام بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ماہ مبارک کے رمضان میں عرض کر چکا ہوں کہ واقعا موجودہ حالات میں، جو دنیا کے حالات ہیں اس میں، یہاں پہ چاہے مجلس پڑھی جا رہی ہو یا جشن کی تقریر، خوشی ہوتی ہے کہ عزا خانے میں موجود ہیں، تبرکات ہمارے دائیں بائیں ہیں، ممبر رسول پر بیٹھنے کا شرف و موقع مل رہا ہے. حالات انشاءاللہ بدلیں گے، لیکن بہرحال امام حسن مصطفیٰ کے حوالے سے آج کی جو گفتگو، ایک جملے کے ذریعے سے میں اسے اپنی لاسٹ اسپیچ سے کنیکٹ کروں گا، اگرچہ وہ وفات کی مجلس تھی اور آج ولادت کا جشن ہے، لیکن اگر سننے والوں میں کوئی ایسا مومن یا مومنہ ہے جس نے میری لاسٹ اسپیچ بھی سنی تھی، شب 10 رمضان ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب، تو اس کا جو آخری جملہ تھا، بس سمجھئے کہ آج کی تقریر وہیں سے کنیکٹ ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ طاہرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر آئیں گی اور اپنے اس نواسے کو لے کے آئیں گی جس کا حق ادا نہ کیا گیا اور جس پر وہ ظلم عظیم ہوا. مصائب تو نہیں پڑھنا، وہ خدیجہ کی گود میں خدیجہ کا آخری نواسا آئے گا. آج کی رات ہے خدیجہ کے پہلے نواسے کی، اور ایک ایسی بات ہے کہ جو صحیح معنوں میں وہی لوگ محسوس کر سکیں گے کہ جو نانا نانی دادا دادی بن گئے. لیکن سنا ہر ایک نے ہوگا کہ انسان جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا، اس سے زیادہ محبت اولاد کی اولاد سے کی جاتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی اتنی پیاری نہیں رہتے جتنا اپنا نواسا یا اپنا پوتا پیارا ہو جاتا ہے. صحیح معنوں میں اگر خدیجہ طاہرہ کے لیے وہ غم کا دن تھا جو پچھلی تقریر میں میں عرض کر چکا ہوں، تو آج خوشی کا وہ دن، خدیجہ طاہرہ کو آج پہلا نواسا مل رہا. اور کیا کہنا نانی کی خوشی اور مسرت کا، نواسا اور وہ پہلا نواسا. اور خالی خدیجہ طاہرہ نہیں، وہ تو اس لیے کہ پچھلی تقریر میری جناب خدیجہ طاہرہ کی اس فریاد سے تھی کہ یا رسول اللہ یہ میرا نواسا، وہ ظلم کی فریاد تھی، اس لیے میں نے ربط ملایا کہ آج خدیجہ طاہرہ کی خوشی. لیکن خالی خدیجہ طاہرہ نہیں، یہ پورے خاندان اہل بیت کے لیے. اب وہ رشتہ جو خدیجہ طاہرہ کا ہے، وہی رشتہ رسول اللہ کا بھی تو ہے نا، نانا کتنا خوش ہوگا. اور خاص طور پر ماں کی خوشی کو آپ دیکھیے. اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جملہ بھی نہیں، ایک لفظ یا ایک ٹرم، اور اس سے پھر میری آج کی تقریر آگے بڑھے گی. ہمارے یہاں ہمارے اسلامک کیلنڈر میں ایک ڈیٹ آتی ہے جس کا نام ہم لوگ آج کر رکھتے ہیں عید الزہرا. 9th of ربیع الاول ہے، इसका नाम है ईद उज जहरा। यह फातिमा जहरा की सही मानों में वो तारीख फातिमा जहरा की ईद है। एक रमजान की ईद होती है और एक फिर हज की ईद होती है और फिर एक विलायत की ईद होती है गदीर, और एक बेसत की ईद होती है और एक ईद उज जहरा। सही मानों में फातिमा जहरा का दिल खुश करने वाली तारीख। लेकिन अगर आप तारीख को देखिएगा तो असली ईद उज जहरा जो थी वो आज 15 रमजान थी। फातिमा के घर की सही मानों में पहली और हकीकी खुशी। अजीब जिंदगी थी शहजादी कौनैन की। जिस दिन शहजादी कौनैन इस दुनिया में आई है उस दिन से लेकर हसन मुश्तबा की विलादत तक समझिए कि खुशी का कोई मौका फातिमा की जिंदगी में आया ही नहीं। बल्कि अगर यह जुमला कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा कि ऐलान रिसालत के बाद से लेकर आज 15 रमजान तक यह समझ लीजिए कि काशाना नबूवत में पैगंबर के घर में खुशी का कोई मौका आया ही नहीं। मुसीबतें, आलाम, इम्तिहानात, सब्र की मंजिलें, गम, पूरा एक साल का गम। सही मानों में जो खुशी मनाई गई वो आज के दिन 15 रमजान, जब हसन मुश्तबा इस दुनिया में आया। अब एक जुमला मुझे इस वक्त कहना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी तफसील में मैं ना चला जाऊं तो आज का मौजू रह जाएगा। खदीजा ताहिरा ऐलान नबूवत के बाद 10 साल जिंदा रही। शहजादी की विलादत हुई है ऐलान नबूवत के 5 साल बाद, तो 8 साल शहजादी मजीद ऐलान नबूवत के बाद बाबा के साथ मक्के में रही, फिर मदीने में आई 3 साल। अब वो जो 10-12 साल खदीजा ताहिरा के गुजरे और शहजादी कौनैन के, वो खुद तारीख का एक बहुत अहम पैगाम है और उसको अलग से समझाने की जरूरत है। इस वक्त मैं अलग से नहीं समझा रहा, सिर्फ एक जुमले के जरिए समझा रहा हूं। शायद 2 दिन के बाद शहादत की जो मजलिसें हैं उसमें मजीद वजाहत हो जाए। इस वक्त कोरोना, मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करता हूं कि सारी दुनिया में इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। हमारा हर आलिम, हर जाकिर, हर खतीब इसी उनवान पे बात कर रहा है। इतनी ज्यादा बातें हो गई हैं कि अब एक तरह से इस मौजू में को मजीद नई बात कहने की गुंजाइश नहीं। मगर बहरहाल पूरी दुनिया के हालात देखने के बाद जो एक खुलासा निकल रहा है वो ये, लॉकडाउन ने लोगों को पागल कर दिया और अब वो स्टेज आ रहा है, ये बस समझिए कि पानी सर से ऊंचा होने वाला है। दुनिया के कई मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुल्क नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक, लोगों का सब्र जवाब दे रहा। जलसे भी हो गए, जुलूस भी हो गए, एहतजाज भी हो गए, लोग घरों से निकल भी आए, लोगों ने कानून भी तोड़ा, लोगों ने सब कुछ शुरू कर दिया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2-3 महीने घरों के इन हालात में बैठना, जो आजकल के हालात, जहां पे अगर ये लफ्ज ना आए कि आपको घर में आइसोलेशन में बैठना, ये लफ्ज ना आए तो आदमी बड़े आराम के साथ, क्या चीज है उसके पास आज नहीं, फिंगर टिप्स के ऊपर सारी दुनिया उसके पास है, दोस्त रिश्तेदार, जानने वाले ना जानने वाले, वो फजूलियात जिन पे 18-18 घंटे आदमी पहले भी टाइम लगाता था। लेकिन अब क्योंकि एक लफ्ज आ गया है ना कि जबरदस्ती तुम्हें घर में रहना है, तो लोग पागल हो रहे। दुनिया के हालात को देखते हुए एक बहुत अहम मौजू बनता है कि जब यह कोरोना खत्म हो जाएगा इसके बाद क्या होगा। हजरत ईसा जिस साल पैदा हुए हैं वहां से दुनिया की तारीख बनी है ना, BC बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट ये साल बने। अब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना क्या होने वाला है, वो एक अलग मौजू है, आज रात से मुनासिबत नहीं रखता है। लेकिन कम अज कम एक चीज यकीनी नजर आ रही, जो बहुत मशहूर जुमला है कि दुनिया वो नहीं रहेगी। और सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है सोशियोलॉजी वालों को वो ये है कि सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी भी वो स्टेज आ रहा, घर में 3 महीने बैठ जाना, 3 महीने तो मैंने ज्यादा कह दिया ऑस्ट्रेलिया के एतबार से, बल्कि पूरी दुनिया में शायद 3 महीने चीन के अलावा कहीं ना हुए हों, वहां तो लॉकडाउन खत्म भी हो गए। महीने डेढ़ महीने में आदमी की क्या हालत है, जरा अंदाजा करें कि इस्लाम की खातिर खदीजा ताहिरा ने 10 साल का लॉकडाउन बर्दाश्त किया। 10 साल ऐलान रिसालत के बाद से खदीजा अपनी वफात तक घर में बिल्कुल अकेली और तन्हा रही। आजकल का जमाना भी नहीं है कि ये मोबाइल आपके हाथ में और वो आईपैड आपके हाथ में और वो आईफोन आपके हाथ में, कुछ 10 साल। और फातिमा जहरा अपनी विलादत से लेके हिजरत तक 8 साल, यहां 8 हफ्तों में इंसान का सब्र जवाब दिया जा रहा, जबकि वो सख्तियां और पाबंदियां भी नहीं। ये इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जब हसन मुश्तबा की विलादत हुई तो गोया कोई मुसीबत मुसीबत ना रही। वो सारा मुश्किलात का वक्त हसन मुश्तबा के चेहरे को देखते ही, खदीजा उस वक्त दुनिया में नहीं थी, फातिमा तो थी, इस अंदाज से इसको मनाया गया इस दिन को। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि हमारे अकीदे के एतबार से भी, कुरान के एतबार से भी, फरमाने रिसालत के एतबार से भी हसन हुसैन का रुतबा बिल्कुल बराबर है। हत्ता ये कि कुछ मौके ऐसे आए कि ऐसा लग रहा था कि शायद हसन थोड़ा आगे बढ़ जाए, शायद हुसैन थोड़ा आगे बढ़ जाए। वो वाकयात याद कीजिए जो आप बचपने से सुनते आए, और मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता। दोनों बच्चे आपस में कुश्ती का मुकाबला कर रहे हैं, बहुत इम्कान है कि इनमें एक बच्चा जीत जाए। वो वाकया याद कीजिए, दोनों बच्चों ने तख्ती लिखी है और अब ये फैसला होने वाला है किसने ज्यादा अच्छा लिखा, जन्नत के मोती आ गया। और एक सिलसिला है वाकयात का, दोनों के बचपने के वाकयात, लेकिन वहां किस तरह से परवरदिगार इस दोनों बच्चों के रुतबे को बराबर दिखाया कि मोती भी अगर 2 टुकड़ों में हुआ तो बिल्कुल बराबर के 2 टुकड़े। तो वह हसन हुसैन का रुतबा हर एतबार से बराबर, ना हसन हुसैन से अफजल है ना हुसैन हसन से अफजल, यह अलग बात है। यह अलग बात है कि तारीखी एतबार से, या यह कहिए कि मुहावरे में यह कहा जाएगा कि हुसैन 8 साल ऐसे गुजारे कि उनका इमाम हसन था, हसन ने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा। लेकिन नऊज़ु बिल्लाह, इससे मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं यह साबित करूं कि आका हुसैन का रुतबा कुछ कम है। यह अलग बात है कि तारीख में यह जुमला मौजूद है कि हसन मुश्तबा के सामने हुसैन इतने अदब और एहतराम के साथ बैठते थे जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठा हुआ है। हसन की हैबत, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों हर एतबार से बिल्कुल बराबर। फिर भी हसन की विलादत में खुशी मनाई अहले बैत के घराने ने, हुसैन की नहीं, क्योंकि हुसैन पैदा हुए और इधर पैदा हुए हैं और उधर जिब्राइल करबला के वाकयात का बयान लेके नाजिल हो गए। वो अभी खुशी शुरू भी नहीं होने पाई थी कि गम के साथ मिल गई। तो हसन मुश्तबा की विलादत इस खानदान की वो पहली और सबसे भरपूर खुशी की तकरीब, जिसकी बुनियाद पर मैं कहता हूं कि असली ईद उज जहरा आज। और यहां पर यह ख्याल करते हुए कि विलादत की असल रात तो ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर से कल गुजर गई, आज विलादत का एक दिन बाद यह हमारी तकरीर हो रही, तो जरा सी तारीखी गुफ्तगु कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। एक बात की अर्ज करना है मुझे, ईद उज जहरा। अच्छा अब यह देखिए कि हमारे यहां इस वक्त जो ईद उज जहरा हम लोग मनाते हैं, तो आखिर उसका क्या बैकग्राउंड बताया जाता है? यही बताया जाता है कि चौथे इमाम ने उस दिन सैदानियों को हुक्म दिया कि अपना शोक बढ़ाओ और बाकायदा ईद मनाओ, अच्छे खाने बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सर में तेल डालो, बालों में कंघी करो। चौथे इमाम जो ईद उज जहरा इस वक्त हमारे यहां राइज है, उसके बारे में यही तो है क्यों चौथे इमाम के हुक्म से शुरू हुई। ईद उज जहरा जो हमारे यहां, और जो मैं कह रहा हूं कि असल में पहली ईद उज जहरा 15 रमजान हसन मुश्तवा की विलादत, हसन वो ईद जो हम लोग मना रहे चौथे इमाम। अगर आप देखिए तो इमाम हसन और इमाम जैनुल आबिदीन के हालात बहुत एक दूसरे के सिमिलर, और दोनों ने मिलकर एक जिहाद किया। आका हुसैन का जिहाद अलग है, हसन मुश्तबा के हालात को अगर हम 12 इमामों में सबसे ज्यादा किसी से सिमिलर करेंगे तो वो सैयदुल साजिदीन, हसन और सज्जाद। ये मेरी अब जो गुफ्तगू शुरू हो रही है उसका मौजू बनने वाला। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखिए कि इमाम हसन और इमाम सज्जाद का आपस का दुनियावी रिश्ता, वैसे तो एक नूर के टुकड़े लेकिन आपस का दुनियावी रिश्ता तकरीबन वैसा बनता है जैसे रसूलुल्लाह और इमाम अली का। इमाम अली कौन है? रसूलुल्लाह के चचा जाद भाई हैं, चचा के रिश्ते से, और दामाद भी। चौथा इमाम जैनुल आबिदीन कौन? इमाम हसन के चचा के रिश्ते से भी हैं, दामाद भी। इमाम हसन चचा है चौथे इमाम के, हर एक को पता ये वही चचा का रिश्ता जो रसूलुल्लाह और इमाम अली का। मगर ये जुमला पढ़ा तो जाता है कि इमाम हसन की बेटी से चौथे इमाम की शादी हुई, मगर फिर वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता जो रिश्ते को जाहिर करे कि चौथे इमाम दामाद हैं हसन मुश्तबा के, जिस तरीके से इमाम अली दामाद है रसूल खुदा के। तो पहली ईद उज जहरा हसन, और आज जो हमारे पास ईद उज जहरा है उनके दामाद चौथे इमाम। और अब आइए इन दोनों के जो हालात मैंने कहा कि बहुत सिमिलर हैं, उसका एक बहुत अहम पहलू आपके सामने पेश करूं। इमाम हसन मुश्तबा ने सुलह की, एक पीस ट्रीटी मुआविया के साथ। जब सुलहनामे की बात आती तो फिर फौरन हमारे जहन चले जाते हैं रसूल खुदा की सुलह हुदैबिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इमाम हसन ने मुआविया से सुलह की, इसकी अहम तरीन वजह एक ही, करबला की तैयारी। और याद रखिए करबला के जिहाद के हवाले से जो चौथे इमाम के हालात हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो कहेगा करबला के जिहाद के दो हिस्से, एक हुसैन है एक सज्जाद है। हुसैन ने करबला फतह किया, सैयदुल साजिदीन ने शाम फतह किया, और वहीं जाके फिर करबला का जिहाद मुकम्मल हुआ। हर एक जानता शाम, मुल्क शाम जो आज सीरिया कहलाता है, लेकिन फिर भी पुराने जमाने का मुल्क शाम इससे बड़ा था। शाम इमाम हसन के सुलहों का एक बहुत बड़ा फायदा या मकसद, फायदा नहीं कहूं मकसद यह भी था कि इसी मुल्क शाम में जहां मुआविया के खानदान को तकरीबन 40 साल इख्तदार देकर पक्का पक्का शाम के लोगों को दुश्मन अली बनाया जा रहा था, इमाम हसन को वहां जाकर अहले बैत की मारिफत, और अहले बैत की मारिफत का मतलब है इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था, और यह सुलहनामे के जरिए ही हासिल हो सकता। सुलह हसन के बाद मुल्क शाम मुआविया का अपना इलाका, सीना ठोक के कहता है कि यहां किसी की बात नहीं चलेगी, यहां मेरी बात चलेगी, यहां के लोग तो मेरे ऐसे फॉलोवर हैं कि अगर मैं जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाऊं तो कोई एतराज नहीं करे। ऊंट और ऊंटने का फर्क न जानने वाले शाम, इस सुलहनामे की वजह से इमाम हसन, मैं दुनियावी बात कर रहा हूं, इमामत की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, इमाम हसन को शाम में दाखिल होने का मौका मिला। और फिर उस शाम में इमाम हसन उस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता अहले बैत के पैगाम को पहुंचाया कि जब सैयदुल साजिदीन अपना जिहाद मुकम्मल करने आए तो वही शाम के नौजवान तलवारें निकालकर यजीद के खिलाफ मैदान में आ गए थे, تلواریں نکالنے کا مقصد محاورتن لیجئے یعنی یزید کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور یزید کو اہل بیت کو رہا کرنا پڑا. شام سب سے مشکل علاقہ بنا دیا گیا تھا اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. یہ امام حسن کی عظمت ہے کہ اس شام میں داخل ہوئے. اور یہیں پر رک کر ایک پہلو خالی بیان کر کے امام حسن کے فضائل کا پھر اس جملے کو مکمل کروں. امام حسن کی جو اہم ترین خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام حسن کا علم ہے. علم علم. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بیان کرنے جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ آقا حسین کی توہین نہ ہو جائے. حسین حسین ہیں, کائنات میں حسین کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے بجز ان کے اپنے بزرگوں کے. لیکن ہمارے پاس ایک بہت مشہور حدیث کہ پیغمبر کا آدھا جسم اوپر والا حسن اس سے مشابہ ہے اور نچلے جسم سے حسین مشابہ. اب اگرچہ بعض علماء تو اس میں خالی ظاہری شباہت میں پڑ گئے. ظاہری شباہت کا مطلب پیر, رسول کے پیر اور حسین کے پیر ایک جیسے ہیں اور رسول کے ہاتھ اور حسن کے ہاتھ ایک جیسے ہیں, مگر یہ ظاہری شباہت نہیں ہے. یہ تو دونوں کا مشن. پیغمبر نے سولہ نامے پہ دستخط کیے. دستخط ہاتھ سے ہوتے ہیں, وہ اوپر کے جسم میں, ہاتھ اوپر کے جسم میں, یہ حسن کو دی. اور پیغمبر نے بدر و احد و خندق و خیبر میں باقاعدہ میدان میں نکل کے جہاد کیا ہے, یہ پیروں سے ہوتا ہے. حسین کربلا میں نکل کے گئے. وہ پہلو تو ہے, لیکن ساتھ میں یاد رکھی علم پھیلانے کے جتنے طریقے ہیں نا وہ سب بھی جسم کے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں. زبان سے آدمی علم پھیلاتا ہے, ہاتھوں سے آدمی علم پھیلاتا ہے, آنکھوں سے آدمی علم پھیلاتا ہے, دماغ. حسن مشتبہ اپنے نانا اور بابا کی سب سے بڑی جو خصوصیت ملی وہ علم. اور ایک بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں الگ الگ کر کے میرے ذہن میں آ رہی ہیں, میں جمع نہیں کر پا رہا ہوں. ایک بات یہ عرض کر دوں, علم علم ہونا کافی نہیں ہوتا, آدمی میں کنونسنگ پاور ہونا چاہیے. علم ہو لیکن اس کے بعد پھر اس طریقے سے وہ سامنے والے کو کنونس کر سکے, جسے حضرت موسیٰ کی دعا رب اشری لی صدری و یسر لی عملی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, لوگ میرا قول سمجھیں. نبی کا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, بات لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی. ائمہ طاہرین, اب یہ بہت ڈرتے ڈرتے بات کہہ رہا ہوں, ایک کی فضیلت دوسرے کی توہین مت لے لیجئے گا. جو کنونسنگ پاور امام حسن مشتبہ کے پاس, مولا علی کو چھوڑ کر, مولا علی تو خیر الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنت و ابوہما خیر منہما, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کے بابا ان سے بہتر. تو رسول اللہ اور مولا علی وہ تو اس کمپریشن میں آ ہی نہیں رہے. کنونسنگ پاور حسن مشتبہ کو اللہ, یہ ہر امام کے پاس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ دوسروں کے پاس نہیں, لیکن حسن مشتبہ کو چونکہ ایک ایسا جہاد کرنا تھا, تیار کرنا تھا پہلے سے کربلا کے لیے اور کربلا کا جو آفٹر افیکٹ ہونے والا, پبلک ڈیلنگ, لوگوں سے بات کرنا تھا, تو اللہ نے علم اور ساتھ ساتھ علم کے ساتھ پھر وہ کنونسنگ پاور. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ سامنے والے کو کنونس نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس ٹالرنس نہ ہو. جب بھی کسی سے ڈیبیٹ یا آرگومنٹ ہونا, شاید آپ میں سے بہت سو کے علم میں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہیں, ہم لوگ سے مطلب یہ ہے کہ شیعہ نہیں, شیعہ سنی جتنے بھی, ایک ہمارے ہاں سبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی مخالف سے آپ کا کوئی ڈیبیٹ یا آرگومنٹ ہو تو کس طریقے سے اس کو شکست دی جاتی. اس میں پورا چیپٹر ہے باب مغالطہ, کیسے دلیل کو اس طرح سے ایک آدھ لفظ کی تبدیلی کے ساتھ پیش کرو کہ سامنے والا چکرا جائے. جیسے ابھی میں سن رہا تھا ایک کلپ, اب دیکھیں میں ذرا سا موضوع سے پھسل گیا. کہا کہ جنت میں جانے کے لیے نماز وماز کی کوئی ضرورت نہیں, اپنے ہی کوئی کہہ رہا تھا. जन्नत के लिए नमाज कोई जरूरत नहीं है, जन्नत में तो कुत्ता भी गया, क्या कुत्ते ने कोई नमाज पढ़ी? जब बगैर नमाज पढ़ाए कुत्ता जा सकता है तो मोमिन क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, कहने वाला जो कह रहा सो कह रहा, पब्लिक के हिसाब से ये बात इतने, उसका आईक्यू लेवल अब मजमा जो आप देखते हैं तो ऐसा लोटन कबूतर बना हुआ था, अब वाह वाह नारे और ऐसा जोश। अब ये जो है हमारे यहां, पता नहीं उस आदमी ने भी ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये कैसे, हाउ टू डिबेट या मुनाजरा, कैसे मुनाजरा करो, उसमें एक बाकायदा एक चीज होती, आर्गुमेंट दो, दलील दो, लेकिन कोई इसके अंदर थोड़ा सा चक्कर चला। अच्छा, इसका जवाब तो जरा सा भी पढ़ा लिखा आदमी दे सकता, पढ़ा लिखा भी जरूरी नहीं, समझदार, क्या कुत्ते पर नमाज वाजिब है? अगर वाजिब है और बगैर पढ़े नमाज में जन्नत में गया तो आपकी बात ठीक, उसमें तो वाजिब ही नहीं, मोमिन पे नमाज वाजिब, जिस पे वाजिब नहीं, जैसे कोई छोटा बच्चा अगर मर जाए 5 साल का तो वो तो जन्नत में जाएगा, ये तो नहीं कहेंगे इसने नमाज नहीं पढ़ी, बस पे नमाज वाजिब ही नहीं। भाई इतनी सी बात, कुत्ते और मोमिन को मिला तो दिया, मगर ये ख्याल ना किया दोनों के केस में एक फर्क है ना, इस पे नमाज वाजिब है, उस पे वाजिब नहीं। लेकिन खैर, ये मैं कहां से कहां चला गया, ये चीजों के लिए 3 दिन के बाद की मजलिसें ज्यादा मुनासिब है। तो अब मसला ये होता है कि किस तरह से सामने वाले को शिकस्त देना, तो उसमें ये हक और बातिल की बात नहीं होती भाई, ये कि आपको अपनी बात साबित करना है तो उसमें एक तरीका ये भी है कि सामने वाले को गुस्सा दिला दो, वो गुस्से में आ गया तो बस आवाज जीत गए। तो बहुत अहम होता है इंसान के अंदर इतना पेशेंस या टॉलरेंस। अब आप देखिए पूरे 12 इमामों में किसके लकब में शामिल है हिल्म, हिल्म माने टॉलरेंस। हमारे पास जो आइम्मा ताहिरीन के बहुत मशहूर लकब, साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया व इस्मत फातिमिया व हिल्म हसनिया व शजात हुसैनिया, हुसैन की शजात और बहादुरी और हसन का हिल्म। हिल्म खाली इसका नाम नहीं है कि कोई आदमी उनको मुंह पर बुरा भला कह रहा था, इमाम मुस्कुरा मुस्कुरा के उसे कह रहे थे भाई इतने गुस्से में क्यों हो, भूखे हो, खाना खिला दूं, लिबास नहीं है तुम्हारे पास तो मैं लिबास प्रोवाइड करूं, सवारी नहीं है, ये वाकयात। मगर ऐसे वाकयात तो आपको हर इमाम के बारे में मिले, खास इमाम हसन के लिए लफ्ज हिल्म इसलिए आया कि कन्विंसिंग पावर के साथ उनको, उन लोगों को कन्विंस करना था जो बदतरीन दुश्मन है अहले बैत, और करबला के जिहाद की एक तैयारी करना था। अगर आप देखेंगे कि जब अहले बैत का लूटा काफिला सीरिया या शाम पहुंचा तो किस तरह से मेरे मौला सैयद सज्जाद का काम आसान हुआ, क्योंकि जगह जगह पॉकेट्स बने हुए थे ऐसे लोगों के जो अहले बैत को जानते थे। वो इमाम हसन का जिहाद, हसन का कौन सा जिहाद, सुलोनामा, सुलोनामे में दस्तखत किए और उसमें एक कंडीशन ऐसी रखी, वो पूरा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, सुलोनामा टाइम भी नहीं है, और शायद अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने के बाद, कितने साल हो गए मुझे तो याद भी नहीं रहा, इतना याद है कि बहुत तवील अरसा हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने के बाद यह साल पहला साल होगा कि मैं इमाम हसन की शहादत की मजलिसें भी ऑस्ट्रेलिया ही में पढ़ूंगा, वरना मैं यहां कहां होता हूं, हालात इस वक्त ऐसे हैं कि मुझे शायद यहां होना, उसमें यह ज्यादा अच्छा रहेगा, इमाम हसन की जिंदगी का यह हिस्सा। लेकिन कंडीशन नहीं पढ़ रहा, एक कंडीशन ऐसी रखी जिसकी वजह से इमाम हसन को कई बार सीरिया जाने का मौका मिला। ये सब जाहिरी बात कर रहा हूं, वरना इमाम तो ऐसी सुपर नेचुरल ताकतें रखता है कि चीजें उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, और किसी इमाम को सीरिया में एंटर होने की परमिशन ही नहीं हो सकती थी, मुआविया का अपना इलाका, जब कोई इलाका किसी मखसूस गुरोह का गढ़ हो जाता वहां पे नहीं जा सकते आप। इमाम हसन वो सुलहनामे के जरिए बार बार सीरिया को, जब सीरिया गए इस्लाम और अहले बैत का पैगाम पहुंचा गए। शायद अब ये जुमला जो मैं कह रहा हूं पूरी मेरी इस पर अभी कंप्लीट रिसर्च नहीं है, शायद मुआविया और बनो मैया के लोगों से सबसे ज्यादा ओपन डिस्कशन और मुनाजरे इमाम हसन ने ही किए, आमने सामने सीरिया जाते हैं اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے کہ امام حسن گفتگو کرتے. امام حسن کا علم. اچھا امام حسن کا علم یہ بھی میں عرض کر دوں, کسی اور امام کی توہین نہ ہو جائے, بہت ڈرتے ڈرتے کئی واقعات ایسے ہیں. میں وہ واقعات نہیں پڑھ رہا جو آپ ہر سال اب ہر عالم سے سننے لگے. حضرت خضر کا آنا, رسول اللہ سے سوال کرنا, رسول کا کہنا میرے اس بیٹے سے پوچھو. بلکہ وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت خضر خود مولا کے پاس بھی آئے, امام علی کے پاس بھی, اور امام علی نے کہا میرے اس بیٹے سے بات کرو. وہ تو بہت مشہور ہو گئے خضر کے کا امام حسن کا شاگرد ہونا. تو وہ واقعات میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کا وقت بچانا چاہ رہا ہوں, گرچہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ کا ویسٹ کر دیا. لیکن خضر نبی کی بات چھوڑی, وہ تو نبی, ان کو آرڈر ملا, رسول نے کہا اس سے پوچھو, جا کے پوچھا, مولا نے کہا اس سے پوچھو, پوچھا, دونوں نے بھیجا امام حسن کا. ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگ آئے امام علی کے پاس مسئلہ پوچھنے, امام علی نے کہا یہ مسئلے کا جواب میں نہیں دوں گا, یہ میرے تین بچے بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی سے پوچھنا, کبھی دو کبھی تین, حسن ہے حسین ہے, اور پھر جب محمد حنفیہ بھی بڑے ہو گئے اور اس قابل ہو گئے سوال کرنے والا. جتنے واقعات میں نے دیکھے کبھی نہ حسین کے پاس گئے نہ محمد حنفیہ کے پاس, سیدھا وہ امام حسن کے پاس جاتا. یعنی جو جملہ میں کہنے والا ہوں اور ڈرتے ڈرتے رک رہا ہوں کہ امام حسین کی توہین نہ ہو جائے, کچھ علم اس طرح سے آقا حسن کے چہرے سے ہے چھلک رہا تھا, ظاہر ہو رہا تھا کہ بالکل غیر اجنبی جس کو اس خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, وہ بھی جب ان تینوں پہ نگاہ ڈالتا ہے چہرہ اس کو حسن کا ہی ایسا نظر آتا ہے. اب دیکھیں پھر توہین کا جملہ بن رہا, امام حسن کے بار 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 ظاہر کیا جا رہا, اور مولا علی بھی ہر جگہ اپنے علم کا وارث. اگر کسی کو قرار دے رہے تو حسن کو, بلکہ خاص طور پہ اس میں وہ واقعہ تو بہت اہم ہے, وہ بھی میں پڑھی دوں. وہ واقعہ کون سا واقعہ ہے کہ ایک بار رومن امپائر, اس کے بادشاہ نے امپرر آف دا ایسٹرن رومن امپائر, رومن امپائر کے دو حصے ہیں, ایسٹرن رومن امپائر جسے کہتے ہیں بیزنٹائن ڈائنیسٹی, جن کا کیپیٹل تھا استنبول. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے سیریا جو تھا یہاں تک تھی رومن امپائر, پہلے سے مطلب کب, رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, جب رسول اللہ نے بھی رومن امپائر کو لیٹر بھیجا اسلام کا, تین خط گئے تھے بہت اہم, ایک مصر کے بادشاہ کے نام جس نے حضرت ماریا کو بھیجوایا تھا تحفے میں, لاسٹ اسپیچ میں یہ جملہ آیا, ایک ایران کے بادشاہ کے نام جس نے رسول اللہ کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا, اب پیغمبر نے کہا تھا اللہ اسی طرح اس کے ملک کے بھی ٹکڑے کرے گا, اور ایک رومن امپائر, تو وہ اس وقت دمسکس میں تھا. تو یہ سیریا جو تھا یہ رسول اللہ کے زمانے تک عیسائی کرسچن رومن امپائر کا بہت اہم علاقہ تھا, حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا, پھر کہاں چلے گئے رومن امپائر, یہ چلے گا ٹرکی تک, پہلے ٹرکی سیریا سب ایک تھا, ٹرکی میں ہو گئے, لیکن یہ ان کا پرانا ملک ہے سیریا. سیریا والوں کو جو مسلمان بھی ہو گئے ان کو بھی پرانا تعلق تو ان کا بہرحال ہے رومن امپائر سے, وہاں کے حالات کی جیسے اس وقت یہاں میلبرن میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بمبئی سے آئے, چھوڑ دیا بمبئی انہوں نے, اب یہاں کے نیشنل ہیں, لیکن بمبئی کے حالات, وہاں کوئی نئی بات ہو کوئی نیا واقعہ ہو تو فوراً کراچی والوں کو کراچی کے حالات, یا کوئی چھوڑ چکے ہیں نیشنلٹی لے چکے ہیں آسٹریلیا کے, واپس جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے, بلکہ دل چاہتا ہے کہ پیرنٹس بھی اگر ہیں تو کھینچ کے یہیں لے کے آ جاؤ, لیکن ایک پرانا رشتہ رہتا ہے نا. تو اب بیزنٹائن امپائر سیریا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیریا میں معاویہ کی حکومت ہے, لیکن یہ لوگ تھے پہلے رومن امپائر کے ماتحت, وہاں کیا ہوتا ہے ان کو اطلاع ملتی. ایک بار اس بادشاہ نے خط بھیجا معاویہ کے نام اور امام علی کے نام, تفسیر فرات کی روایت, خط بھیجا, کہا کہ تم لوگ آپس میں بہت لڑتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور آپس میں لڑ بھی رہے ہو, अच्छा उसके हक में तो बेहतर है ना, आपस में लड़ रहे हैं तो हमारी हुकूमत महफूज है। लेकिन जरा मुझको मालूम करना है कि तुम्हें सही कौन है गलत कौन है, अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो जो आके तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बताए। अब बहुत लंबा वाकया है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारी बातें अभी और बयान करना। अब ये दोनों के नाम खत आ गए, वहां पे जाना और इस्लाम की तबलीग करना। छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे आज किसी को अगर मौका मिले कि यूएनओ में जाओ और जाके बताओ कि इस्लाम क्या, तबलीग का बेहतरीन मौका है, फौरन आदमी ये चांस को अवेल करेगा। फिर एक जुमला और कह दूं कि पूरे 12 इमामों में इमाम हसन मुझे ओनली इमाम मिले जो तबलीग की खातिर इस तरह से काफिरों के बीच में भेजे गए, और किसी इमाम के हालात में इस तरह नहीं मिलता। और इतनी बड़ी उस जमाने की सुपर पावर्स में से एक रोम, कहा कि अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो ताकि मैं मालूम तो करूं कि ये प्रॉब्लम है क्या। अच्छा वो इनका नेबर है, बॉर्डर मिला हुआ है सीरिया का और टर्की का। मुआविया ने यजीद को भेज दिया, बल्कि शायद उसने लफ्ज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कहा था, अपने खुद आओ या अपने सक्सेसर को भेजो, शायद ये लफ्ज होगा। मुझे पूरी रिवायत इस वक्त सही लफ्ज इस सिर्फ एक लफ्ज वो मेरे जहन में नहीं रहा। और इमाम अली, उन्होंने इमाम हसन को भेज दिया। इमाम हसन का बाकायदा बेजेंटाइन एम्पायर के कैपिटल में जाना, इस खत के जवाब में दोनों वहां पहुंचे। अब यजीद को भी पता है कि ये एक बेहतरीन चांस है, ये बादशाह अगर इसको मैंने कन्विंस कर दिया, मुतासिर कर दिया, इसने हमको हक में समझ लिया, फायदा तो हमें कुछ नहीं पहुंचेगा लेकिन एक सपोर्ट मिल जाएगी। चुनाचे जैसे ही ये दोनों दरबार में दाखिल, दोनों आ गए, मगर जो तरीका होता है ना, कहा कि अच्छा जब दोनों आ गए तो फुला दिन मीटिंग होगी दरबार में, यजीद गया, जैसे ही यजीद गए बस समझिए कि उसने सिजदा नहीं किया लेकिन इसके अलावा इतना ज्यादा झुका, हाथों को बोसा दिया, इतना उसके सामने गिर गए। इमाम हसन उसके बाद वो कहने की मुझे जरूरत ही नहीं, उसी तरह सीना तान के शान के साथ पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिनल मुस्लिमीन, सारी तारीफ है उस अल्लाह की जिसने मुझे मुसलमान बनाया, ना मैं क्रिश्चियन हूं, ना मैं जू हूं, ना मैं मजूसी हूं, ना किसी गैर खुदा के आगे झुकता हूं। खुदा अगर आपको कभी टर्की ले जाए, और ले गया होगा, तो जाके इस्तंबुल में बेजेंटाइन एम्पायर के चर्चिज और पैलेसेज और वो सब देखिए। आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में टर्की के ड्रामों का बहुत रवाज, क्या शानदार वो हुकूमत थी। और फिर जिस शान के साथ हसन ने मुश्तबा गया, तो क्यों ना जाएगा जिसके सामने पूरी कायनात बनी है, जो अर्शे इलाही देख के बैठा है उसके सामने, वो महल की क्या हैसियत। और यजीद तो वैसे ही बड़ा इंप्रेस, उसकी तो आंखें फट गई। और उसके बाद फिर यह है कि वो अपनी खुशामद, बहुत ही मुख्तसर एक जुमला कह दूं कि अगर आपको इसी रमजान में मौका मिले, मैसेज फिल्म का खाली वो क्लिप देख लीजिए कि हबशा के बादशाह के दरबार में मक्के के काफिरों का डेलीगेशन गया मुसलमानों की तरफ से जाफर तैयार, वो एक छोटा सा क्लिप एक मिनट का, वो किस तरह से झुके और सजदा किया और जनाब जाफर तैयार की शान देखे, शान अबू तालिब। तो खैर इमाम हसन इसी तरह से वो बादशाह जो है बेजेंटाइन एम्पायर का, किसी अहमक को बेवकूफ को नहीं बिठाते हैं तख्त पे, वो भी समझ गया अंदाज से। उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम दोनों अपने आप को मुसलमान कहते हो, दोनों का यह कहना हम हक पर है, मैं तो सिर्फ दो तरीके से तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं, अभी पता चल जाएगा हक पर कौन है बातिल पे कौन। दो इम्तिहान, नंबर एक, गुलाम को हुक्म दिया जाओ खजाने से वो चीजें लेकर आओ। वो गुलाम गया, अब ये रोमन एम्पायर के खजाने, अब मैं क्या बोलूं, आप तो वेस्ट में बैठे, रोमन एम्पायर की एक शान थी, एक शौकत थी, एक जमाना था उनका, वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो चाहे वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर हो, खजाने के साथ खजाने से एक एल्बम लाया गया, तस्वीरें तस्वीरें। उसने कहा कि ये दो चीजें हमारी किताबों में लिखी है कि दो जो इन दो चीजों को हल करेगा वही सच्चा होगा। एक तो एल्बम लाया, और एल्बम लाके उसने यजीद को पहले बुलाया क्योंकि यजीद झुक गया और सजदा तकरीबन सजदा किया, और उसके बाद कहा कि ये तस्वीरें 1-2 बाज रिवायतों में है कि बहुत थी, बाज में है 7-7 एक एक करके रख का ये क्या। उसने कहा मुझे क्या पता है क्या तस्वीरें हैं, कुछ लोगों की पिक्चर्स हैं, कहीं बताओ किन लोगों की, मेरा मुझे क्या मालूम। उसने इशारा किया इमाम हसन को आगे बढ़ तस्वीर देखते जाते, पहली तस्वीर देखी कहा ये तो आदम नबी, दूसरी तस्वीर देखी कहा ये तो नूह, तीसरी तस्वीर देखी कहा ये तो खलील खुदा हजरत इब्राहिम, चौथी तस्वीर देखी कहा कि ये तो जबीउल्लाह हजरत इस्माइल, पांचवी तस्वीर देखी कहा ये हजरत शुएब हैं जनाब मूसा के फादर इन लॉ, उनका भी एक बड़ा अहम रोल है लेकिन खैर। छठी तस्वीर देखी कहा ये तो हजरत यहिया हैं, सातवीं तस्वीर देखी कुछ बोले नहीं रोने लगे। वो बादशाह सवाल करता है कि भाई ये रो क्यों रहे, कहा ये तो मेरा नाना रसूल खुदा है जिसकी तस्वीर तुमने मेरे सामने रख दी, नाना को याद दिला दी। उसने कहा तुमने बिल्कुल ठीक है, यही नाम हमारे पास लिखे हुए। अच्छा अब यहां पर रुककर वाकये को रोककर एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, परवरदिगार ने कुरान करीम में खिलाफत खलीफा कौन बन सकता है, जमीन का हुक्मरान कौन बन सकता है, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बताया, सबसे पहला हजरत आदम पैदा हुए, पहले ही पारे में यह है, माहे रमजान की पहली तारीख को आपने कुरान पढ़ा है तो यह आयतें पढ़ी, फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं इस जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। सबसे पहली शख्सियत आदम है जिसके लिए कुरान में लफ्ज आया, तभी तो इमाम मासूम की हदीस जो मेरे दादा अली को चौथा खलीफा न माने उस पर अल्लाह की लानत, चौथा खलीफा कहा कुरानी खलीफा, कुरान ने पहले आदम को खलीफा कहा, दूसरा हारून मूसा के खलीफा बने, तीसरे दाऊद और चौथा मेरज्जत इमाम अली, तो कुरानी जो खलीफा लोगों के बनाए हुए नहीं, पहले आदम। कुरान में पूरा वाकया आया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन पे इसको खलीफा बनाता हूं। फरिश्तों ने एतराज किया, टाइम नहीं है कि मैं अल्फाज जरा अच्छे बयान करूं, कहा किसको खलीफा बना रहा, कहा जाओ मुकाबला हो जाए। फरिश्तों और आदम का मुकाबला हुआ ना, आप देखिए उसमें क्राइटेरिया क्या आ रहा, आदम को खलीफा बनाया और अल्लाह ने उसकी वजह क्या बताई, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए, अल्लमा तालीम दी आदम को तमाम नामों की, और फरिश्तों से मुकाबला हुआ, फरिश्ते जवाब ना दे सके, आदम ने जवाब दे दिया, कहा इस वजह से आदम को खलीफा बनाया, वो सबके नाम जानता। अब ये नाम क्या थे, दो रिवायतें, एक रिवायत एक जमीन पे जितनी चीजें उनके नाम बताए, और दूसरी जो रिवायत तफसीर बुरहान में मुल्ला हाशिम बहरैनी ने लिखी वो यही कि नाम बताए से मतलब क्या बताए, 1,24,000 अंबिया और 12 इमामों के नाम, और फिर इन 12 इमामों में से हर एक के इंतहाई मुखलिसियों के, यानी जमीन पे जो एक हिदायत का सिलसिला चलने वाला है आदम से लेके 1,24,000 अंबिया रसूल खुदा तक और इमाम अली से लेके इमाम जमानत, ये सारे नाम आदम को बताए गए, आदम ने ये नामों का जवाब दिया, फरिश्ते खामोश हो गए कि हां सुभानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, खुदावंदा तेरा फैसला बिल्कुल सही है, यही खलीफा बनने का हकदार है। तो खिलाफत का फैसला पहले दिन इस बुनियाद पर हुआ कि कौन इनके नाम जानता है। आज बेजेंटियन अंपायर ईस्टर्न रोमन अंपायर के दरबार में यजीद खामोश बैठा है, हसन मुश्तबा उन तमाम अंबिया के नाम बता रहे हैं जिनके नामों से यह फैसला हो रहा है खिलाफत किसको मिलती। हसन मुश्तबा की इमामत और खिलाफत वो तो वो उस बादशाह के जहन में ये नहीं था, उसके जहन में तो था हमारे पास सच का मेयार है कि जो दो बातों का जवाब दे, ये पहली बात। दूसरी बात वो तो बहुत मशहूर है लेकिन अब वाकया पढ़ रहा हूं तो पूरा पढ़ो, ये तो हो गया एक तरह से विजुअल मुकाबला, ये तस्वीरें हैं बताओ किसके नाम, या आदम ने वो सारे नाम बताए या हसन मुश्तबा ने इस वक्त के नाम बताए। और दूसरा सवाल यह था कि वो बताओ वो सात जानदार कौन से जो बगैर बाप और बगैर मां के पैदा हुए। ये तो मैं हर साल 15 रमजान को पढ़ता रहता हूं तो बहुत छोटी सी रिवायत है, रिपीट हो जाए। दरबार, रोमन एम्पायर का दरबार, यजीद भी खड़ा, हसन मुश्तबा भी खड़े। दूसरा सवाल, यजीद कहने की जरूरत ही नहीं उसकी क्या हालत होगी, इमाम हसन ने कहा सुन लो, वो सात जानदार जानदार हैं लेकिन ना उनका कोई बाप है ना उनकी कोई मां। नंबर एक आदम, आदम का ना कोई बाप है ना कोई मां। नंबर दो हव्वा, ना कोई बाप है ना कोई मां, ही दो तो बहुत ही मशहूर हर आदमी समझ ले। नंबर तीन वो कौवा, काबिल मलून ने अपने सगे भाई हाबील को शहीद किया, शहीद तो कर लिया पर समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करना, डेड बॉडी का क्या करना। एक कौवा आया ना जिसने फिर दूसरे कौवे को मारा और फिर जमीन खोद के उसको दफन किया, तो फिर काबिल को पता चला कि ये एक तरीका होता है डेड बॉडी का। ये उस दिन से तरीका आज तक चला, इतना सख्त तरीका चला कि हमारे इस वक्त के सारे मराजे इंक्लूडिंग आयतुल्लाह सिस्तान कोरोना डिजीज के बारे में कह दिया कि जब वो डेड बॉडी जब कोई मर जाए कोरोना से तो बाकी सारे अहकाम माफ हो जाते हैं, गुस्ल भी साकित हो सकता है, हुनूद भी साकित हो सकता है, नमाज जनाजा भी साकित हो सकती है। मैयत को दफन करना का वो गवर्नमेंट का कानून है कि मैयत को जलाना है का ये कानून नहीं माना जाएगा। जहां तक रिजिस्ट कर सकते हैं रिजिस्ट करना वाजिब, ये इतना अहम मसला। बाद लोग आयतुल्लाह सिस्तानी का एक मसला पहले से था इस वक्त लेके उड़ पड़े, ये हुकूमत का हर कानून मानना, नहीं हर कानून नहीं है उसकी तफसीलात हैं लेकिन फिलहाल नहीं। शहादत के मजलिसों में इस साल मेरा इरादा है थोड़ा सा चंद अहम मसाइल को भी वाजे करूंगा लेकिन फिलहाल वक्त बहुत गुजर रहा है। कौवा दफन किया और यह इतना अहम मसला बना, यह वो मसला है जो तमाम अंबिया में आया, इसमें किसी शरीयत में चेंज नहीं आई। ये पहला इंसान का वो कौवा जो अल्लाह ने भेजा, उन्हें बाप था ना मां था। चौथी चीज हजरत मूसा की स्टिक या असा या लाठी, वो नहीं, वो तो बेजान है, जमीन पर डाला वो अजदहा बन गया। ये जो अजदहा बना है ये जानदार है लेकिन इसका बाप कौन है कोई नहीं, मां कौन है कोई नहीं। नंबर पांच हजरत साहले की ऊंटनी, जो पहाड़ में से हजरत साहले ने एक ऊंटनी निकाली। अब तो हर एक को वाकया मालूम हो गया क्योंकि कसरत से लोग नजब की जियारत को जा रहे हैं, जब नजब जाते हैं तो वादी सलाम जाते हैं, वादी सलाम जाते हैं वहां दो ही अंबिया के रोजे सबसे अहम है, हजरत हूद हजरत साले, हजरत साले की ऊंटनी। अभी ये बच्चा मुझसे पहले तिलावत कुरान कर रहा था, आज का प्रोग्राम अल असर का तिलावत कुरान से शुरू हुआ, सूरह वशम से बस वहा की तिलावत कर रहा था, उसी के अंदर हजरत साले की ऊंटनी का वाकया। इज अम्बास आज का वकाल लहुम रसूलुल्लाह नाकतल्लाह वसुक्या खै, जरबात अंबिया। पांचवी चीज वो ऊंटनी, तीसरी चीज कौवा, चौथी चीज अजदहा जो मूसा की लाठी से बना, पांचवी चीज ये ऊंटनी। छठी चीज कहा हजरत ईसा का वाकया, कुरान करीम में भी है सूरह माया, इन्नी अखलोको मिना तीने का है ती तैर, मैं मिट्टी से चिमगादड़ बना के उड़ाता हूं। वो जो हजरत ईसा ने मिट्टी से चिमगादड़ बनाई, कहा जाता है कोरोना डिजीज जो है या वायरस ये चिमगादड़ से शुरू हुआ, ये तो खैर मेरी फील्ड ही नहीं है लेकिन वो हजरत ईसा ने खुद कुरान कहता है मिनत तीन में मिट्टी से बना रहा हूं, मिट्टी से, अभी आंखों के सामने न बाप है न मां। और सातवीं चीज वो मेंढा जो हजरत इस्माइल के जबा होने के वक्त उनकी जगह पे जन्नत से आए, न बाप है न मां। कैसर रोम एक मरतबा वो बेजेंटन एम्परर कहता है बिल्कुल यही हमारे यहां लिखा, यही सात जानदार ऐसे हैं जो इन दो सवालों का जवाब दे वही हक पर है, जो जवाब ना दे सके वो बातिल पर। हसन मुश्तबा ईस्टर्न रोमन एम्पायर, अच्छा ये वाकया दरबार में हुआ, ऐसा नहीं कि उसने अपने कमरे में बुला के इम्तिहान लिया, भरे दरबार सैकड़ों देखने वाले, तो वाकया जो फैला तो मशहूर जो हुआ तो वहां से लेके सीरिया और मुआविया के मुल्क और हर जगह फैलता चला गया। हसन मुश्तबा फातिहाना शान के साथ कूफे अपने बाबा के पास तो वापस गए लेकिन जो उस वक्त कैसर रोम के दरबार में कामयाबी लेके आए उसके आफ्टर इफेक्ट्स उस सीरिया तक पहुंचे, ये सीरिया के लोग मुसलमान हो चुके लेकिन उनको अपने पुराने मुल्क की खबरें तो है ना, वहां इतना बड़ा एक वाकया हुआ। हमारा बादशाह हार गया, यजीद जो हमारा मुखालिफ है अली उसका बेटा जीत गया। और ये आसान मुश्तबा को देखिए कि इमामत इस तरह चल के ईसाई के दरबार में जाती है सिर्फ इसलिए کہ حق کے پیغام کو عام کیا جائے. یہ حسن مجتبیٰ کی زندگی میں واقعات آپ کو ملیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں اور پھر زحمت تمام اس لیے کہ 50 منٹ میری اسپیچ کو ہو گئے. امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بار بار وہ جو 16 نامہ ہے نا, اس کا مقصد کیا تھا؟ سیریا جو معاویہ کا اپنا علاقہ ہے اس میں پینیٹریٹ کرنا اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا, اور اہل بیت کا پیغام الگ کچھ نہیں ہے یعنی اسلام کو پہنچانا. تو اب یہ ایک واقعہ تو خیر ذرا سیریا سے ہٹ کے ہے لیکن اس کے اثرات سیریا پہ بہت زیادہ پڑے. اس کے علاوہ بھی امام حسن کا آنا جانا رہتا ہے. اچھا یہاں پہ قابل توجہ ایک بات اور ہے, ایک جملہ خالی کہتا ہوں کسی اور موقع پہ تشریح. امام حسن کا جیسا میں نے کہا ایک علم ایسا ہے کہ اگر بطور مثال کہہ رہا ہوں یہاں 50 آدمی بیٹھے ہوں اور ان میں ایک حسن مجتبیٰ ہو تو کوئی بھی آنے والا آئے گا چہرہ دیکھ کے بتا دے گا علم ہے تو یہاں پر ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں اپنے علماء اور مراجع سے میں سے دوں. تو امام حسن تو خیر کتنے امام حسن کا ایک علم ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, ایک معجزہ ایسا جو امام حسن نے اتنی مرتبہ دکھایا, اتنی مرتبہ. پہلے تو اس کو ناممکن سمجھا جاتا تھا, اس کے اوپر مذاق اڑتا تھا, لیکن آج کل ایک عام سی چیز ہو گئی. یہ اور ائمہ طاہرین میں آپ کو نہیں ملے. اب کچھ ہے اس کے پیچھے راز, میں اس راز کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہوں. کون سا معجزہ جو امام حسن نے بہت دکھائے؟ مردے کو زندہ کرنے کے معجزے کئی معصومین کے. اور اسی طرح سے مثلاً کوئی بھی چیز بتا دینا, انسان کو آنن فانن یہاں سے امریکہ پہنچا دینا, عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانا, یہ امام حسن کے حالات میں ایک عجیب بات ہے. کچھ ہے اس کے پیچھے راز. امام حسن کے حالات میں یہ والا معجزہ بہت ملتا ہے. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3, 4, 5 جتنی مرتبہ آپ دیکھ لیجیے. ان میں سے ایک واقعہ پڑھتا ہوں تاکہ جو میرا اصل موضوع, جو سجاد نے شام پہنچ کر جہاد کیا, وہ حسن مجتبیٰ کے جہاد کا پارٹ 2 تھا. بلکہ اگر کسی کو آقا سجاد کی ایک روایت ہی یاد ہو, وہ ہے مصائب کی روایت, کہ ایک دن یزید نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ شام کی مسجد میں خطبہ دو, اور وہ روایت اور وہ خطبے یاد ہونا, اور امام حسن کا واقعہ سنے تو اسے دوہرا لطف اور مزہ آئے گا, ڈبل مزہ آئے گا, اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. حسن مجتبیٰ کا سیریا آنا جانا بہت ہوتا. سیریا سے مطلب اس وقت وہ پراپر سیریا جہاں معاویہ خود بیٹھتا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صلح نامے میں ایک کنڈیشن ایسی رکھی تھی, وہ پھر بات کی بات. اسی میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بار پہنچے امام حسن سیریا میں, اور شاید یہ جو ابھی واقعہ میں نے پڑھا قیصر روم والا, شاید یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت کسی وجہ سے سیریا میں اہل بیت کے لیے سافٹ کارنر لوگوں میں پیدا ہو چکا تھا. لمبی جوڑی تقریر ہوتی, یا یہ کہ اگر جیسا میرا ارادہ ہے کہ شاید امام حسن کی وفات پہ اس سال میں ایک سے زیادہ 2-3 اسپیچز کروں تو اس میں بات آ جاتی ہے, ابھی وقت نہیں. تو ایک مرتبہ سیریا میں جو دشمنی اہل بیت کا کٹر مرکز ہے, دو جنریشن علی کی دشمنی میں وہاں پہ پروان چڑھا دی گئی ہیں, پیدا کر دی گئی. یہ جو الاسر میں سنڈے کو ایک مدرسہ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور جہاں جہاں یہ مدرسے ہوتے ہیں, معاویہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر بچوں کو ایسا برین واش کیا تھا علی کے خلاف. اور بچے بچے, ہم اپنے مدرسوں سے فائدہ اٹھا کے ان کو مومن کامل بنا سکتے ہیں, دشمن اہل بیت علیکم السلام ان مدرسوں سے, کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اب بات کو آگے نہیں پھیلاتا ہوں. ایک بار معاویہ کا جو ایڈوائزر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اچھا موقع ہے, हसन आजकल आए हुए हैं डमस्कस में, और ये थोड़ा बहुत एक लहर सी दौड़ गई है, कोई शिया नहीं बन रहा, कोई मोहिब अहले बैत नहीं बन रहा, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर, इसको खत्म करना। ऐसा करो कि हसन मुश्तबा को इनवाइट करो कि वो हो मस्जिद में जाके खुतबा दे, और हसन मुश्तबा को स्पीच करना नहीं आती है। देखिए इमाम हसन के खुतबात बहुत कम है, न होने के बराबर है। आका हुसैन के खुतबात देखिएगा, वाकान मुर्दा आदमी भी है तो वो जिंदा हो जाता है, इतना जोश है उसके अंदर। इमाम हसन के अच्छा बिल्कुल तकरीबन एक जुमला, चूंकि मैं ऐसा फिर कह गया जिसमें थोड़ी सी तौहीन की झलक आ रही है, तो मैं कह दूं, अल्लाह के रसूल मौला अली से अफजल है, लेकिन अगर आप कलाम देखिएगा ना, तो मौला अली के जो नहजुल बलागा के खुतबात हैं, पैगंबर का कलाम आपको उस अंदाज का नहीं मिलेगा। उसकी हिकमत और मसलहत तो यही बताई जाती है कि अगर पैगंबर का भी उतना उसी स्टाइल का अंदाज होता तो काफिरों का वो इल्जाम, वो एलिगेशन बिल्कुल साबित हो जाता कि जी कुरान इन्होंने खुद बनाया, कि तो हाँ ये बेहतरीन खतीब, देखो तो अल्लाह ने जानबूझकर पैगंबर की इस फजीलत को सामने नहीं आने दिया, ताकि पैगंबर के जो बाकी खुतबात हैं उनमें और कुरान में बहुत बड़ा फर्क, एक बिग डिफरेंस हो। खैर तो ये तो एक अलग मौजू है। इमाम हसन, जैसा कि अभी मैंने कहा, टेबल टॉक, फेस टू फेस गुफ्तगू, वन टू वन बेसिस, कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है। खुतबे नहीं देते, बहुत कम खुतबे दिए। जंग जमल के हवाले से कहा जाता कि जब कूफे के लोगों ने जरा सी शरारत की थी तो मौला ने अम्मार यासिर के साथ भेजा था, लेकिन बहरहाल यह खसूसियत इमाम हसन की इतनी मशहूर नहीं थी। हमारे आस कहता है मुआविया से बेहतरीन मौका है। अच्छा, अब यहां पर वही आदमी यह चीज समझ पाएगा जो खुद एक स्पीकर हो, कहा कि इनको ले जाओ मस्जिद में, इनसे कह दो खुतबा दे। अब इनसे बोला तो जाएगा नहीं, फिर यह जुमला है हमारे आस का कि मजमे को देखकर तो इनकी जबान लड़खड़ा जाएगी। दुनिया का बेहतरीन खतीब क्यों ना हो, जो उसने पहली तकरीर की थी उसकी क्या हालत है अगर गलत तरीके से उससे तकरीर करवाई गई। आमतौर पर यह होता है कि खुद इस बात का ख्याल करते हैं जब किसी को स्पीच सिखाते हैं, पहले छोटा मजमा फिर उससे बड़ा मजमा, एकदम से ले जाके आप उसको हजारों के मजमे में बिठा दें। तो उमर आस कह रहा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, और वो यह है कि अरब के लोगों में खिताबत, यह स्पीकिंग पावर, यह स्पीच, इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान जो मौजजा बनके अरबों के पास आया वो अपनी फसाहत और बलागत की वजह से। आज हमको पता है कि कुरान में क्या चीज है जो कुरान में नहीं। साइंस के एतबार से भी देखें तो असल मौजजा ये है कुरान का, लेकिन अरबों के पास ये चीजें नहीं थी। उनको इससे कोई गरज नहीं थी कि वो लिल्लाह अल-मशारिक वल-मगारिब का क्या मतलब है, और खाल बदलने का क्या मतलब है, और जब फजा में जाओ तो सांस घुटता है, उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक है फसाहत और बलागत। तो वो तो उनके अंदर, उनके पास एक बहुत बड़ी फजीलत की चीज होती है, कहा ये बोलेंगे ही नहीं तो जो थोड़ा बहुत एक असर पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी एक बदकिस्मती रही, इसीलिए हमें खतीब इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा पसंद है, बड़े से बड़े उलेमा की कोई अहमियत नहीं। तो नतीजे में हम दीन इनसे लेते हैं, उनसे नहीं लेते, और इनसे लेते हैं तो वही है कि कुत्ता जो है वो बगैर नमाज के जन्नत में चला गया तो मोमिन भी बगैर नमाज के जाएगा, ये बनता है दीन। खैर तो बात ये थी कि अरब फसाद, हसन से बोला नहीं जाएगा। हाकिम शाम बहरहाल है तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का, लेकिन अगर इन्होंने अच्छी तकरीर कर ली, कहा कि नहीं फिर उसका भी हम इंतजाम कर लेंगे। अब ये हमारे आज की शरारत को जो जानता है, बात को मैंने फैला दिया, मुख्तसर करूं। चुनाचे जिस वक्त को हाकिम शाम से मिले तो कहा कि फर्जंद रसूल, आज बहुत दिल चाह रहा है आपकी तकरीर सुनने का, आज आप खुतबा देंगे। और ये इस तरह से नहीं कि मैं आपको मस्जिद में ले जाऊंगा, बाकायदा इसको अनाउंस करूंगा, लोगों को मेहमान बुलाऊंगा, बाहर के भी विजिटर्स आएंगे, पूरा शाम आएंगे, जितना बड़ा मजमा कर सकूं। और मजमा भी वो हॉस्टाइल मजमा है शाम वालों का। तो अब ये ऐसा हुआ, इसके बाद जो इमाम हसन मिंबर पे गए, खुतबा दिया, तब तो कहने की जरूरत ही नहीं, इमामत चीजें सीख कर कोई थोड़ी आगे बढ़ती। क्या बेमिसल खुतबा था, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि उसके जुमले मिलाइए चौथे इमाम के खुतबे से, का जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता तो मैं अपनी मारिफत करा दू। अनबन मोहम्मद इन मुस्तफा, अनबन रसूल्ला, अनबन नबील्ला, अनबनो अनबनुल बशीर नजीर, अनबनु सिराज मुनीर, अनबनो मक्का व मिना, अनबनो रुकन वल मकाम। जो जानता है, जो जानता है, जो नहीं जानता पहचान तू, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं, मैं रसूल खुदा का बेटा हूं, मैं नबी खुदा का बेटा हूं, मैं साहिब मोजिजात का बेटा हूं, मैं मक्की और मिना का बेटा हूं, मैं रुकन और मकाम का बेटा हूं, मैं बल्कि एक जुमला इसमें ज्यादा है जो चौथे इमाम के खुतबे में नहीं, अनबनुल मशअर वल अराफात, मैं मशरुल हराम और अराफात का बेटा हूं, मैं सिराज मुनीर चमकते हुए चिराग का बेटा हूं, मैं बशीर और नजीर का बेटा हूं। और फिर ये कहते कहते चौथे इमाम ने भी है, वो खुतबा अगर जहन में हो, फिर क्या कहा कि मैं उसका चौथे इमाम, मैं उसका बेटा हूं जिसे प्यासा जबा किया गया, यहां कहा मैं उसका बेटा हूं जिसका हक छीन लिया गया, भरा दरबार, पूरा दरबार भी नहीं, पूरी मस्जिद भरी हुई, माविया के सारे वीआईपी किस्म के मेहमान आजकल आज बुलाए गए, जो खुतबा दे रहे हैं अपना हक उसके अंदर वाजे करते हुए, मैं उसका बेटा हूं जिससे हक छीना गया, मैं उसका बेटा हूं जिससे अल्लाह ने खलीफा बरहक बनाया, अनबनो अली अनिल मुर्तजा, अनबनो मोहम्मद अल मुस्तफा से शुरू करके अनबनो अली अनिल मुर्तजा पे बात खत्म की उस मजमे में, जो दुश्मनी अली के अंदर शुरू से ही ट्रेन किया गया, पूरा दरबार जो था वह हिल के रह गया, यहां तक कि वही कैफियत हुई जो चौथे इमाम के खुतबे में हुई थी कि यजीद के हाथ पांव फूल गए, मौसिन से कहा अजान दो और इनका कलाम मुनकता करो, यहां भी वही मस्जिद, इनकलाब आ रहा है, तब्दीली हो रही है कि मुआविया, यहां अजान का तो मसला नहीं था, मुआविया ने कहा फरजंद रसूल हमने बहुत इस्तेफादा कर लिया आपके खुतबे से, अब आप नीचे तशरीफ ले आइए। देख रहा है पूरा मजमा इस वक्त, इमाम हसन को भी पता है, चुनाचे इमाम हसन जैसे उसने कहा वो नीचे उतर के आ गए। मुआविया ने हमारे आस को देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, उसने क्या कहा था मैंने पहले से इंतजाम रखा, अब उसने कुछ लोग बैठे हुए थे आगे, उन्होंने फिर फाउल लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, दुष्नाम, एब्यूज लैंग्वेज वो शुरू कर दी। इमाम हसन के बारे में मैंने शुरू में अर्ज किया हिल्म टॉलरेंस, लेकिन इस वक्त के माहौल इस तरह से ये बात कही कि इमाम हसन को जलाल आ गया, कहा कि तू औरत होकर नामहरम मर्दों के बीच में क्यों बैठी। जैसे ही ये जुमला कहा तो जो सबसे बढ़-बढ़ के बातें कर रहा था, पहले तो उसकी दाढ़ी गिर गई, दाढ़ी के बाल जो है उसके झड़के गिर गए, चेहरा उसका औरतों जैसा बना, वो इमाम हसन का जलाल था। यहां बहुत से मोमिन खुद ही पहले से ही अपना चेहरा ऐसा बना लेते हैं, मौला आपको जरूरत नहीं है, जहमत ना करें कोई ऐसी दुआ करने की, हम वैसे ही अपने चेहरे को औरतों जैसा बनाते हैं। खैर ये इमाम अली की मजालिस में तफसील आई। और उसके बाद अब कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो मैं मिंबर से नहीं कह सकता, एकदम उससे फील हुआ कुछ फिजिकल चेंजेस का, वो घबरा के वहां से भागा, एकदम चेंज हो गया, कुछ ऐसी तब्दीलियों का अपने जिस्म के अंदर चेहरे से आगाज हुआ है दाढ़ी गिरने से, वो घबरा के भागा। और यहां पे इमाम हसन उठ के जाने लगे, अमर यात ने रोक लिया, कहा दो तीन सवाल करना है। अब वो बात इल्म की आ गई, क्योंकि उसका वाकया मैं पहले पढ़ चुका हूं, रिपीट नहीं करता, कि अब यह खुतबा था, जरा सा लोगों के सामने कुछ ऐसा सवाल करो कि जवाब ना दे। भागा भागा वो नौजवान गया, वाकान एक औरत हिजाब के साथ आती और आके इमाम हसन के कदमों पे गिर पड़ी, मौला मेरे शौहर ने बड़ी गुस्ताखी की, लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई, मेरे शौहर को उस पुरानी हालत में बदल दीजिए। और इमाम हसन ने कहा अच्छा, अपने शौहर को ले गया, वो आया, इमाम हसन ने दुआ की और वो दोबारा मर्द बन गए। लेकिन जिस वक्त इमाम हसन ने जलाल के आलम में यह कहा था कि तू ये एक औरत होके यहां क्यों बैठा, उस वक्त यह भी कहा था कि चला जा और लोगों के लिए इबरत की चीज बन जा, कि लोग इसे देखेंगे, ये वाकया कितना फैलेगा, मशहूर हो जाएगा। हर एक आदमी पूछेगा, भाई ये तो कहां गए, वो तुम्हारे शौहर कहां गए? वो बराबर औरत बीवी अपने बराबर बैठी हुई औरत को देख के कहेगी, ये मेरे शौहर। उसकी मां आएगी, भाई मेरा बेटा कहां गया? कहा वो आपका बेटा तो आपकी बेटी बन गया। उसके चचा आएगा, मेरा वाकया फैलेगा ना। तो इमाम हसन ने कहा, तू इबरत बन जा कि तुझे लोग देखें और पता चले कि इमामत के मुकाबले पे आने वाले को किस अंदाज से इसी दुनिया में अल्लाह सजा देता है। लेकिन ये एक वाकया तो मुल्क शाम का, इसके अलावा भी कितने ऐसे वाकयात। और फिर यहां पे बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी एक जुमला बहुत जरूरी था, और वो ये था कि ऐसे वाकयात कई बार पेश आए। इसमें एक वो जुमला भी था, एक आदमी ने आके वो जुमला भी कहा था जो शबस इब्ने रबी ने एक दफा करबला में आका हुसैन से कहा था। शबस इब्ने रबी वो था कि जब मौला जिंदा थे, मौला की फौज में शामिल होकर मुआविया से लड़ा था, करबला में यजीद की फौज में शामिल होकर हुसैन से लड़ा। तो आका हुसैन ने उससे कहा, तुम तो कल मेरे साथ एक परचम के नीचे मेरे बाबा की फौज में जिहाद कर रहे थे। का तुम्हारा बाबा मैजिशियन जादूगर था, बातें करना बहुत आती थी, उसने मुझे चकरा दिया था। तो इसी तरह एक शामी ने आके इमाम हसन से एक जुमला क्या है, हसन मुश्तबा, वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, हसन मुश्तबा के पास एक कन्विंसिंग पावर थी। कहा, हसन मुश्तबा तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हो, सामने वाले को तुम एक मिनट में बदल देते हो। देखिए ये जुमले जब दुश्मन कंडेम में कह रहा है, इसके पीछे पूरी हसन मुश्तबा की सीरत छुपी है, और यही तुम्हारे बाबा की भी खासियत थी। तो इमाम हसन ने क्या कहा कि मैं खाली लोगों के दिल नहीं बदलता हूं, मैं चाहूं तो एक लम्हे में शाम को इराक बना दूं, इराक को शाम बना दूं, औरत को मर्द बना दूं, मर्द को औरत बना दूं। तब उसने कहा था, बातें तो बड़ी है, बना के दिखाओ। और आपको याद है कि इमाम हसन का जुमला, कुन इमरातन बेइज़्निल्लाह व कुन रजुलन बेइज़्निल्लाह, तू औरत बन जा अल्लाह के हुक्म से, उसकी बीवी बराबर खड़ी थी, कहा तू मर्द बन जा अल्लाह के हुक्म से। उस वक्त किसी ने कहा कि मौला हसन मुश्तबा, जब आपके पास इतनी ताकत है, आंखों से देख रहे हैं, तो फिर आखिर आप सबको अपनी इताअत के रास्ते पर क्यों नहीं लगा सकते? कहा, हम अपनी इताअत जबरदस्ती नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं जो हमारे करीब आए खुशी से आए, और जो हमसे दूर जाए वो भी सोच समझ के जाए, ताकि सजा और जजा का निजाम खत्म न होने पाए। अब ये बहुत बड़ा जुमला है जिसमें अबू हनीफा और बहलोल दाना का पत्थर मारने का वाकया सब कुछ आ गया। ये कुदरत कामिला का ऐसा मुजाहिरा जो हसन मुश्तबा ने किया, खासिये मोजिजे वाला, इसमें बहुत सारी बातें आ गई। और क्यों ना, हसन मुश्तबा को कायनात में कैसी फजीलत मिली है जो हसन से पहले तो किसी को नहीं मिली, खत्म बात, बल्कि हसन के बुजुर्गों को नहीं मिली। तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक फजीलत का एक पहलू, जो रसूलुल्लाह को ये फजीलत नहीं मिली, जो इमाम अली को फजीलत नहीं मिली, जो जनाब फातिमा को ये फजीलत नहीं मिली। हसन का इल्म, हसन का टॉलरेंस, हसन की कन्विंसिंग पावर, हसन का बेजेंटियन एम्पायर में जाके जिहाद इल्मी, ये सब आपने सुना ना। तो वाकई यही गुजारा, एक ऐसी फजीलत मिली दुनिया में आज तक जितने भी इंसान गुजरे हसन से पहले, या उनका बाप मासूम था या उनकी मां मासूमा। इब्राहिम के इस्माइल के बाप मासूम है, मां मासूमा नहीं। सुलेमान के बाप मासूम है, मां मासूमा नहीं। सिलसिला देख, या मां मासूमा है तो बाप नहीं, जैसे ईसा। हत्ता रसूल खुदा और इमाम अली और शहजादी फातिमा महफूज अनिल खता है, मासूम नहीं। हसन मुश्तबा इस कायनात का पहला इंसान है जिसका बाप भी मासूम है और जिसकी मां भी मासूम है। जब बाप भी मासूम, मां भी मासूम, तो हसन मुश्तबा फजीलत के किस मंजिल पर होगा? चुनाचे वाकन सही मानों में खुशी ईद उज जहरा जो है वो आज है, और इसी मुनासिबत से महले बैत अथाही का वसीला देते हुए बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, खुदा बंदा तुझे वास्ता इस खुशी का जो इस वक्त जमीन पर रहने वालों से लेकर आसमान के साकिनों तक हर जगह जो खुशी की एक लहर, तुझे वास्ता नाना के दिल की खुशी का तुझे वास्ता, नानी के दिल की खुशी का तुझे वास्ता, मां के उस दिल की खुशी का। दुनिया भर में जितने भी साहिबान ईमान, खास तौर पर मेलबर्न के मोमिनीन और मोमिनात, इन्हें हर आफत, हर बला, हर परेशानी, हर मुसीबत से महफूज फरमा। हसन मुश्तबा के तुफैल इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। खुसूसियत के साथ सारी दुनिया आज जिस मुसीबत का सामना कर रही है, खुदावंदा दुनिया भर के तमाम इंसानों को बेहक हसन मुश्तबा इस मुसीबत से महफूज फरमा। खुदावंदा हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हम सबको हसन हुसैन की सरदारी में जन्नत में दाखिल फरमा। जहूर इमाम में ताजील फरमा। जिस जिसने इल्तिमास से दुआ के ये कहा है उनकी दुआएं कबूल फरमा। माह मुबारक रमजान की हमारी इन कलील इबादतों को कबूल फरमा। खुदावंदा जो कुछ हम ना भी मांग सके वो सारा सवाब और फजीलत भी हमको अता फरमा। और हमें गैबत के इस जमाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करके बाद जहूर इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जियारत, अच्छा पहले या बाद में? अभी जियारत होगी। और चूंकि आज की रात इमाम हसन का हमने जश्न पढ़ा, तो इमाम हसन की जो एक खास जियारत पढ़ी जाती है जन्नतुल बकी में इमाम हसन की कब्र पे, वो भी पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर विलादत की खुशी की मुनासिबत से केक कटिंग की सेरेमनी है जो फेसबुक पे, वो भी दिखाई जाएगी। मुतवज्जे है जियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وأولادك وصحابك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، خاص زيارة إمام حسن. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. آئیے زیارت پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے، میرے دماغ میں جنت البقیع آ رہی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی قبر آ رہی ہے، وہ حسن مشتبہ کی قبر آ رہی ہے۔ جہاں کھڑے ہو کر ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں تو یہ دعا بھی شامل کرتے ہیں۔ خدا بندہ جلد از جلد وہ موقع فراہم فرما کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں دوبارہ اثر نہ ہو، وہی شاندار روضے تعمیر ہوں۔ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفت اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا صراط اللہ، السلام علیک یا بیان حکم اللہ، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک ایہا السید الزکی، السلام علیک ایہا البر الوفی، السلام علیک ایہا القائم الامین، السلام علیک ایہا العالم بالتاویل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان يا مولانا من فتنة الزمان، أجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعل لنا من أنصارك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. آپ تمام صاحبان ایمان مومنین و مومنات کو امام حسن مشتبہ سردار جوانان جنت یہ ولادت مبارک ہو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کہ کٹنگ کی سیرومنی ہے، جس کے بعد الاثر سوسائٹی کا یہ جشن اختتام کو پہنچے گا۔ کل کوئی مجلس یا کوئی تقریر نہیں ہے، انشاءاللہ ٹیوزڈے سے 18واں روزہ کھول کر شب 19 سے مولائے متقیان کی شہادت کے سلسلے کی 4 روزہ مجالس ہوں گی، اور انہی کے بیچ میں جو جو شبائے قدر ہیں اس کے اعمال انجام دیے جائیں گے۔